हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष रूप से इस ग्रेस वरा प्रभु, इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण और सभी जो भक्त हैं मंदिर के, आप सबका हार्दिक धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ बलराम जी के बारे में कुछ बोल सकूँ मैं, क्योंकि एक तो ये भी है कि ये पहली बार इस बलराम जी के बारे में बोलने का मौका मिला है, और क्योंकि और सालों में तो हम लोग अगर बोलते भी थे तो बहुत बहुत कम, ये शायद पहली बार है। 18 सालों में, पिछले 18 सालों में ये पहली बार है बलराम जी के बारे में कुछ कहने का मौका मिल रहा है, और गुरु महाराज की भी विशेष कृपा है, उन्हीं की अनुमति से ये कुछ मैं कहने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी व्यस्त रहता है हमारा कार्यक्रम, जितना भी है सेवाओं में लगे रहने के कारण इतना समय नहीं मिल पाता है तैयारी करने के लिए, तो कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिए। हरे कृष्ण। बलराम, कृष्ण बलराम मंदिर है ये, आप सबका बड़ा सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि दिल्ली में श्री श्री कृष्ण बलराम कार्य विग्रह की स्थापना हो, प्रभुपाद जी ने तेजस प्रभु को बताया था, चिट्ठी लिखी थी उनको कि दिल्ली में एक मंदिर होना चाहिए जहाँ पर हम श्री श्री कृष्ण बलराम के विग्रह का की स्थापना कर सकें करें, और एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जाए जिसके दर्शन के लिए भक्त लोग आए और पूरा लाभ उठा सकें। तो ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है पंजाबी बाग के भक्तों को कि कृष्ण बलराम यहाँ पर बुला रहे हैं। एक रूप से देखा जाए तो ये स्थान वृंदावन सा भिन्न है, और हमारा जो दिल्ली मंदिर है वो द्वारका सा भिन्न है, तो हम लोग द्वारका से वृंदावन आ गए हैं। असली हमारा घर है, प्रभुपाल ने कहा वृंदावन इज माई होम, बॉम्बे इज माई ऑफिस, मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप, तो ये घर ही है, और यहाँ पर विशेष कृपा है और भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये भी कृष्ण बलराम की विशेष कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, और दिन प्रतिदिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रचार भी बढ़ रहा है। तो बलराम जी आदि गुरु तत्व हैं, और जितने भी गुरुजन हैं, दीक्षा गुरु हों या शिक्षा गुरु हों, पथ प्रदर्शक गुरु हों, वो सब बलराम जी के ही प्रतिनिधि हैं। बलराम जी कलयुग में नित्यानंद प्रभु हैं, और कृष्ण जो हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हैं। तो बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कृपाल हो जाते हैं, बहुत दयालु हो जाते हैं, है ना, और वो कृपा सबको बांटते हैं। नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पर हम लोग गए एक चक्रधाम, तो वहाँ पे हमने देखा कितनी बड़ी कृपा है नित्यानंद प्रभु की उस स्थान में, कि ऐसे स्थान में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं जहाँ पर कोई जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान केवल भारत में ही प्रकट होते हैं। अब तो कली काल में भगवान ने अवतार सब जगह ले लिया है, पूरे पृथ्वी में भगवान प्रकट हो चुके हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जिस तरह से भक्त पूरे पृथ्वी में है, उसी तरह से भगवान भी अब पूरे पृथ्वी में सर्वत्र व्याप्त हैं, अर्च्य विग्रह के रूप में और हरिनाम संकीर्तन के रूप में। तो इस तरह से हम लोगों का पूरा सु अवसर है, ये विशेष हमें लाभ मिलता है इस आंदोलन भाग लेने से, हमें नित्यानंद प्रभु की महाप्रभु की कृपा मिलती है, पंचतत्व की कृपा मिलती है, और इस तरह से फिर कोई सौभाग्यशाली बनता है ब्रज में प्रवेश करने के लिए। जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होगी हमें धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। जिस स्थान में आप बैठे हैं, जहां पर आप बैठे हैं, अभी बैठे हैं आप यहां पर फर्श पर जहां बैठे हैं आप, ये आप बलराम जी के ऊपर बैठे हैं। बलराम जी की ये शक्ति है, संधनी शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, और ये मंदिर जो है पूरा ये बलराम जी का ही विस्तार है। तो एक एक स्थान जहां पर हम बैठे हुए हैं, कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, हम सब बलराम जी के ऊपर बैठे हैं। तो ये बलराम जी की विशेष कृपा है हम सबके ऊपर कि बलराम जी हमें अनुमति दे रहे हैं ऐसे बैठने के लिए। जब भूमि पूजन भी होता है, मंदिर स्थापना करने से पहले, मंदिर के निर्माण से पहले भूमि पूजन होता है, तो वहां पर भी क्या किया जाता है, अनंत शेष को स्थापित किया जाता है। अनंत शेष जो है वो मंदिर को धारण करते हैं, भगवान को धारण करते हैं अपने शेष शीश में। क्योंकि इतना विशाल मंदिर आप देख रहे हैं, श्री श्री राधा पार्वती मंदिर पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, तो इसकी रक्षा कौन करता है, अनंत शेष कर रहे हैं। तो अनंत शेष के ऊपर जो है ना विशाल मंदिर, उनके सर पर रखा हुआ है, भगवान ने चरण रखे हुए हैं, राधा पार्वती के चरण अनंत शेष के ऊपर हैं। तो अनंत शेष बलराम जी के ही विस्तार हैं। और चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं, छत्र पादुका शैया उपाधान बसान आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा निम्नलिखित रूपों को धारण करके करते हैं, छाता खड़ाओ बिस्तर तकिया वस्त्र आराम कुर्सी निवास स्थान योग्योपवीत तथा सिंहासन। जय श्री श्री राधिकरमान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरताय पंच तत्व की जय। बहुत सुंदर श्रृंगार आज हुआ है, और विशेष रूप से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ से, कृष्ण बलराम तो मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से बलराम जी अपना विस्तार करते हैं संकर्षण के रूप में, अनंत शेष के रूप में। और जैसे यहाँ पे हमने बताया कि निम्नलिखित रूपों को धारण करते हैं, तो इस प्रकार कहने के तात्पर्य यह है कि बलराम जी भी श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। प्रभुपाद से किसी ने पूछा एक बार कि प्रभुपाद ने पूछा भक्तों से कि कृष्ण शक्तिशाली है या बलराम शक्तिशाली है, तो सबने ये कहा कि बलराम शक्तिशाली है ना। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, देखो कृष्ण शक्तिशाली है, बलराम जी सहारा लेके खड़े हैं, कृष्ण का सहारा लेके खड़े हैं, देखिए उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ। लेकिन देखा जाए तो कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और बलराम में कोई भी अंतर नहीं है। केवल अंतर है तो केवल वर्ण का अंतर है, रंग का ही भेद है। कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे हैं, बस इतना ही भेद है। बलराम जी की भी सखा है, बलराम जी भी रामघाट में रासलीला करते हैं, बलराम जी भी बाल लीलाएं करते हैं, बलराम जी भी असुरों का वध करते हैं। इसलिए देखा जाए तो कोई मूल रूप से भेद नहीं है। लेकिन फिर भी कृष्ण जो है आदि पुरुष है। तो यहां पर जयदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, गीत गोविंद में सबसे पहले दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वहसी बपुषी विषदे वसनम जलधाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृता हलदर रूपा जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हे केशव, हे बलराम का रूप धारण करने वाले जगदीश, हे दुष्टों का मद हरने वाले हरे, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम बलराम अवतार में गौर वन वाले श्री विग्रह में सजल जल जलत के समान नीलांबर को धारण करते रहते हो। एक अंतर यह भी है कि कृष्ण जो है वो क्या है, पीताम्बर वस्त्रधारी हैं, बलराम जी नीलांबर वस्त्रधारी हैं। रंगों में दशों दिग्पालों के द्वारा वांछनीय एवं रमणीय रावण के मस्तक रूप, क्षमा करिए आगे बढ़ गया, नीलांबर हल के प्रहार से भयभीत हुई अतः सम्मिलित हुई यमुना के समान प्रतीत होता है। तो यहां पर बता रहे हे केशव, हे बलराम का रूप धारण करने वाले। तो कृष्ण जो सबसे पहला रूप धारण करते हैं, ये सब शाश्वत रूप है। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब कृष्ण ने ये रूप धारण किया, उससे पहले बलराम जी नहीं थे, इसका निष्कर्ष ये नहीं है। लेकिन इसका निष्कर्ष ये है, समझने के लिए बताया गया है। ये इसलिए बताया जाता है कि हम समझ पाए कि कृष्ण आदि पुरुष, अन्यथा बलराम जी शाश्वत रूप से हैं, कृष्ण भी शाश्वत रूप से हैं। आत्मा के लिए भी यही कहा जाता है, भगवान गीता में कह रहे हैं अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराणम। जब आत्मा शाश्वत है तो भगवान क्यों नहीं शाश्वत होंगे? तो ये शाश्वतता की जो अनुभूति होती है हमें, यह आध्यात्मिक जगत में जो शाश्वतता का निवास है, वो बलराम जी की वजह से, संधनी शक्ति जिसको कहते हैं, और उसी का विकृत रूप जो है इस भौतिक जगत में भी देखते हैं। भौतिक जगत में भी एक बद्ध जीव को जो शाश्वतता की अनुभूति होती है, हम सबको भी लगता है ना कि हम भी शाश्वत रूप से यहां रहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ शाश्वत है। हमारा घर शाश्वत है, हमारा परिवार शाश्वत है, हमारा व्यापार शाश्वत है, हमारे मित्र शाश्वत है, हमारा धन शाश्वत है, हमारा पद शाश्वत है, सब कुछ शाश्वत है। ये जो शाश्वतता की अनुभूति है, ये संधनी शक्ति का ही विकृत रूप है। तो आध्यात्मिक जगत में जो शाश्वतता की जो अनुभूति होती है वो है बलराम जी, उसके कारण बलराम जी है। तो बलराम जी शाश्वत है। तो केवल यही अंतर है कृष्ण और बलराम है। जब बलराम जी की कृपा होती है, किसी के ऊपर विशेष कृपा हो जाती है, जब बलराम जी की कृपा हो जाती है, तब श्रीमती राधारानी की कृपा होती है, और तब जाके कोई राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर सकता है, अंतरंग लीलाओं में प्रवेश कर सकता है। और गुरुदेव क्या है? वो बलराम जी के और श्रीमती राधारानी की दोनों के ही प्रतिनिधि है। इसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं गुरु वंदना में, श्री गुरु। श्री गुरु का अर्थ ही यही है कि गुरुदेव जो है वो बलराम जी और श्रीमती राधारानी दोनों के ही प्रतिनिधि हैं। तो बुद्धिमान जो शिष्य होगा वो गुरुदेव की सेवा करेगा, उनको बलराम जी का प्रतिनिधि और श्रीमती राधारानी का प्रतिनिधि मानते हुए गुरु की सेवा करेगा, निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक। तो इस तरह से क्या होगा, जब ऐसा शिष्य गुरु की सेवा करता है तो पूरे गुरु परंपरा की कृपा मिलती है, और जब गुरु परंपरा की कृपा मिलती है फिर उसके बाद षड गोस्वामियों की कृपा मिलती है, और फिर पंचतत्व की कृपा मिलती है, और फिर क्या होता है, फिर हमें जाके जो है राधा कृष्ण की कृपा मिलती है, या कृष्ण बलराम की कृपा मिलती है, फिर राधा कृष्ण की कृपा मिलती है। तो ये एक हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि गुरु की सेवा बहुत ही आवश्यक है। तब जाके गुरु तत्व, ये बताया गया है कि गुरु तत्व, जीव तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, ये जो सारे तत्व हैं इनको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन समझा जा सकता है जब कोई समर्पित होता है। जिस तरह से भगवान गीता में कह रहे हैं, भक्त्या माम अभी जानाति यावन या शास्मी तत्वतः। कोई अगर मुझे तत्व से जानना चाहता है तो केवल भक्ति से ही जान सकता है। तो इसलिए सबसे पहले समर्पण की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार हम लोग फिर गुरु को समझ सकते हैं। तो ये यहां पर बताया गया। तो हम लोग इस कथा को प्रारंभ करेंगे, ये बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से बलराम जी प्रकट हुए। तो हम जानते हैं कि आज से 5000 साल पूर्व जब पृथ्वी का भार बढ़ गया था, पृथ्वी देवी वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ बढ़ गया था असुरों और राक्षसों के कारण। पूरे पृथ्वी में असुर और राक्षस चारों तरफ फैल गए, और ये असुर और राक्षस लोग जो हैं राजा के रूप में विद्यमान थे और शासन कर रहे थे पूरे पृथ्वी में। पूरे पृथ्वी में संसार के जो लोग हैं, विशेष रूप से जो साधु ब्राह्मण हैं, उनको दुखी करके रखा हुआ था इन्होंने। तो माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वो ब्रह्मा जी के पास गई, आंखों में आंसू बह रहे थे उनके, और ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की। और उसके बाद जैसे हर बार होता है जब असुरों और राक्षसों का प्रभाव बढ़ जाता है पृथ्वी में, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं, देवताओं को लेकर कहाँ जाते हैं, क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। और ब्रह्मा जी जो है फिर प्रार्थना करते हैं देवताओं के साथ। ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, वो केवल ब्रह्मा जी सुन पाते हैं भगवान की वाणी को, शब्द ब्रह्म को। फिर ब्रह्मा जी देवताओं को सूचित करते हैं कि क्या होने वाला है। इस प्रकार ये प्रक्रिया है। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे, सृष्टि के प्रारंभ में भी भगवान कृष्ण ने दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। तो इस तरह देवता लोग क्या करते हैं, पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान से क्या सुना ब्रह्मा जी ने, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या बोला देवताओं को, कि उन्होंने बताया कि शिरोदक्षाय विष्णु की आज्ञा है। क्या आज्ञा है, कि परम भगवान जल्द ही प्रकट होने वाले हैं, लेकिन उनकी आज्ञा है आप सबके लिए। उन्होंने आज्ञा दी है कि आप सभी देवतागण क्या करें, यदुवंश में पुत्रों के रूप में और पौत्रों के रूप में आप प्रकट हों। और परम भगवान श्री कृष्ण जो हैं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो देवतागण जो हैं अपनी पत्नियों के साथ इन परिवारों में प्रकट हों और इस तरह से उनको प्रसन्न करें। तो ये मतलब इस प्रकार संदेश दिया ब्रह्मा जी ने, बताया देवताओं को कि क्या उन्होंने सुना। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वासुदेव कलानंता सहस्र वदन सुराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पहले विस्तार, वासुदेव कलानंता सहस्र वदन सुराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। तो पहले जो विस्तार है भगवान श्री कृष्ण के संकर्षण, जिनको अनंत कहा जाता है, जो कि सभी अवतारों के स्रोत हैं, वो इस संसार में प्रकट होंगे। लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या कौन प्रकट होंगे, मूल संकर्षण बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। किसको प्रसन्न करने के लिए, परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनके दिल्ली दिव्य लीलाओं में सहयोग देने के लिए। तो ये नहीं कि केवल जीव ही, वास्तव में जीव का ही स्वरूप है नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। केवल ये नहीं कि देवताओं का ही स्वरूप है कि वो दास। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं, अंशावतार हैं, अंशकला अवतार हैं, उनके जब जितने भी विस्तार हैं, यहां तक कि बलराम जी भी जो है वो सब भी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो भी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। हालांकि उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं है, वो सभी विष्णु तत्व हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं उनको आदि कारण मानते हुए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार कंस के कई सहयोगी थे, कई मित्र थे, और जो कि जरासंध की रक्षा में थे, उनके संरक्षण में थे। बहुत सारे असुर थे पूरे पृथ्वी में, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अगासुर, शक्टासुर, बानासुर, भौमासुर, बहुत सारे असुर थे पूरे पृथ्वी में। असुर ही असुर भरे हुए थे, राक्षस ही राक्षस भरे हुए थे। ये सब यदुवंश के खिलाफ थे, विरोधी थे। और ऐसे यदुवंश के सदस्यों ने अपने घर का परित्याग करके, अपने घरों का परित्याग करके, उन्होंने अलग अलग राज्य में आश्रय लिया, जैसे कि कुरु, पांचाल, केकई, शाल, विदर्भ, इन राज्यों में जाकर उन्होंने आश्रय लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सबको भय था। सारे भक्त लोग, साधु, ब्राह्मण, ये सब भयभीत थे। तो कथा इस प्रकार से है कि कंस ने जो है 6 पुत्रों को मार दिया, एक के बाद एक।
और इस तरह से अनंत देव जो है वो माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए और स्थानांतरित हुए माता रोहिणी के गर्भ में। योग माया की व्यवस्था से ये सारा कार्य जो है योग माया की व्यवस्था से हुआ। दो प्रकार की माया है, योग माया और महामाया। माया का प्रभाव हर जगह है, इस सृष्टि के भीतर भी है, आध्यात्मिक जगत में भी है। जैसे कि गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन में योग माया का प्रभाव इस तरह से है कि वहां कोई जानता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, और यहां जो महामाया के प्रभाव में जो बद्ध जीव है वो भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, सब माया में है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं महात्मनास्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, देवी माया के आश्रित है महात्मा लोग। और इस तरह से भगवान की विशेष सुरक्षा मिलती है उनको। भगवान कृष्ण अपने ऊपर भी योग माया का प्रभाव डाल लेते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण जो है सौराठ है, जब उनकी इच्छा होती है तब वो योग माया का पर्दा हटा देते हैं और फिर से अपनी विभूति, अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार ये यहां पर बताया कि योग माया ने व्यवस्था की और अनंत शेष बलराम जी को स्थानांतरित किया माता देवकी के गर्भ से। स्थानांतरित कहां पे किया? माता रोहिणी के गर्भ में। तो इस प्रकार इन बातों को हम समझ सकते हैं। तो ये सातवें पुत्र थे और योग माया ने जब स्थानांतरित किया माता रोहिणी के गर्भ में, तो उसके बाद परम भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे पहले माता देवकी के हृदय में प्रकट हुए। माता देवकी के हृदय में प्रकट होने से पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, उसके बाद माता देवकी के हृदय में प्रकट हुए। तो इस प्रकार जो है बाद में फिर भगवान कृष्ण आविर्भूत हुआ, भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि तीन प्रकार के अलग अलग विचार हैं, जैसे कि मन के तीन कार्य बताए गए हैं, है ना, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, यानी कि सोचना और के अनुभव करना और उसके बाद कार्य करना। तो सोचने का कार्य किसका है? कृष्ण का। और अनुभव करने का कार्य किसका है? वासुदेव का। और संकर्षण बलराम जो है फिर वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो जो यानी कि आध्यात्मिक जगत में जो भी कार्य हो रहा है वो बलराम जी की वजह से हो रहा है। यानी कि आध्यात्मिक जगत में कोई सृष्टि तो नहीं होती है, लेकिन अब कोई कहे कि आध्यात्मिक जगत की स्थापना कैसे होती है तो वो बलराम जी की वजह से होती है। वृंदावन धाम यहाँ पर इस सृष्टि में कैसे प्रकट होता है? वो बलराम जी की वजह से होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संकर्षण जो है वो बलराम जी, वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की सृष्टि दोनों के ही कारण है। तो पहले विचार कृष्ण हैं और उसके बाद बलराम जी प्रकट होते हैं, और जो दूसरा चतुर्व्यूह है उसमें बलराम जी अपना विस्तार करते हैं संकर्षण के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में, अनिरुद्ध के रूप में और वासुदेव के रूप में। फिर संकर्षण अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, संकर्षण विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, और संकर्षण अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। नारायण के चारों ओर ये चतुर्व्यूह विस्तार है। नारायण वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, तो उनके चारों ओर जो हैं ये जो इनको क्वाड्रुपल एक्सपेंशन कहा जाता है, यानी कि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण, तो इनके अपने अपने वैकुंठ लोक हैं और उनके मध्य में नारायण का लोक है, अपना लोक है, वैकुंठ लोक है। और फिर संकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं जो कि कारण सागर में निवास करते हैं, जिनको कारण दक्षाय विष्णु कहा जाता है। और कारण दक्षाय विष्णु जब इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और गर्भोदक सागर में निवास करते हैं तो उनको गर्भोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। और यही फिर जब क्षीर सागर में जब अपना विस्तार करते हैं तो उनको शिरोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु इस पूरे सृष्टि के भीतर ही हैं, लेकिन जो कारणदक्षाय विष्णु हैं वो इस भौतिक ब्रह्मांड से परे हैं, जिसको बिरजा नदी भी कहा जाता है, कारण सागर को। तो वहां पर
महाविष्णु विराजमान होते हैं।
तो इस प्रकार कई रूप धारण करते हैं भगवान, जो है अनेक रूप धारण करते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम भुवनेषु किंतु कृष्ण समभत परमः पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तहम भजामि।
तो नाना प्रकार के अवतार हैं, लेकिन उसके मूल कारण स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण हैं।
तो इस प्रकार ये इस प्रकार विस्तार होता है बलराम जी का। तो ये जो वैभव प्रकाश और प्रभा प्रकाश, तो बलराम जी जो है स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण के पहले विस्तार हैं। और जो द्विभुज जो रूप होता है कृष्ण का, द्विभुज रूप जो है उसको वैभव प्रकाश कहते हैं, और जो चतुर्भुज रूप होता है कृष्ण का उसको प्रभा प्रकाश कहते हैं। जैसे कि कृष्ण जो है वसुदेव और देवकी के समक्ष जो प्रकट हुए वो प्रभा प्रकाश, लेकिन जब कृष्ण स्वयं प्रकट हुए वो वैभव प्रकाश। तो इस प्रकार आपने व्यक्तिगत रूप में जब कृष्ण ग्वाले के रूप में होते हैं ब्रज में, तो अपने को ग्वाले के रूप में ही मानते हैं, वो अपने को ग्वाला मानते हैं, योग माया का पर्दा अपने ऊपर डाल लेते हैं तो अपने को ग्वाला ही मानते हैं वास्तव में, और उसी तरह व्यवहार करते हैं। जब वात्सल्य रस का आस्वादन करती है माता यशोदा, तो कृष्ण अपने को पुत्र ही मानते हैं। जैसे दामोदर लीला में कृष्ण भयभीत हो रहे हैं, तो वाकई में कृष्ण भयभीत होते हैं एक साधारण बच्चे की तरह। और उसके बाद जब वासुदेव रूप में जब प्रकट होते हैं कृष्ण, तो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। द्वारका में भी जिस तरह से द्वारकाधीश के रूप में, तो कृष्ण भी अपना विस्तार करते हैं, बलराम जी भी अपना विस्तार करते हैं। बलराम जी जो है ब्रज में बलराम जी के नाम से जाने जाते हैं, जब बलराम जी वृंदावन से बाहर जाते हैं तो बलदेव जी के नाम से जाने जाते हैं, वो अपना विस्तार करते हैं। तो भागवत के दशम स्कंद में बताया है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, रोहिन्यास तनिया प्रोक्ता रामा संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि आपने तो संकर्षण के बारे में पहले बता दिया, जो कि दूसरे चतुर्व्यूह में आते हैं, जो कि माता रोहिणी के गर्भ में प्रकट हुए बलराम जी के रूप में। अगर बलराम जी ने एक देह को त्याग कर दूसरे देह में प्रवेश नहीं किए तो ऐसा कैसे संभव हो सका कि माता देवकी के घर में भी प्रकट हुए और फिर रोहिणी के घर में भी प्रकट हुए, यानी कि एक जीव जो है दो माता के गर्भ से कैसे प्रकट हो सकता है, यह कैसे संभव हो सकता है। तो परीक्षित महाराज ने कई प्रश्न इस तरह से पूछे थे। ये दशम स्कंद जो प्रारंभ होता है उसमें ऐसे कई प्रश्न हैं जो परीक्षित महाराज ने पूछे, और प्रश्नों से यह प्रतीत होता है कि परीक्षित महाराज पहले से जानते थे इन लीलाओं के बारे में, लेकिन उसका स्पष्टीकरण चाहते थे सुखदेव गोस्वामी से, वो सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते थे कृष्ण कथा, इस कारण से वो विस्तार से सुनना चाहते थे, इस कारण से ये प्रश्न वो दोबारा कर रहे थे। क्योंकि परीक्षित महाराज के बारे में जानते हैं कि उन्होंने तो माता उत्तरा के गर्भ में साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था, तो बचपन से ही वो कृष्ण भक्त थे, बचपन से ही वो कृष्ण के बारे में निश्चित रूप से सुन रहे थे। लेकिन अब वो सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठे थे, तो उनसे वो सुनना चाहते थे भगवान के बारे में, ताकि साधारण जनमानस जो है उसका लाभ उठा सके इन लीलाओं का श्रवण करके। तो इस प्रकार यहां पर बलराम जी के बारे में बताया। तो आगे एक जगह भी बताया गया है दशम स्कंद के 85वीं अध्याय में, 85th चैप्टर में, टेक्स्ट 47 में, जहां पर इसका इतिहास बताया गया है कि किस तरह से बलराम जी के प्रकट होने से पहले 6 पुत्र प्रकट हुए और उनके प्रकट होने का कारण क्या था, वो 6 पुत्र कौन थे। तो सृष्टि के प्रारंभ में हम जानते हैं कि स्वयंभू मन्वंतर के समय, स्वयंभू मनु के समय में क्या था, मरीचि के 6 पुत्र हुए थे जिनका नाम था ऊर्णा, उनकी पत्नी का नाम था ऊर्णा, और के 6 पुत्र हुए थे, स्वर्ण, उद्गीत, परिश्वंगा, पतंग शूद्र, भीत और घृणी, ये छह पुत्र हुए थे, मरीची के छह पुत्र हुए थे। तो हुआ क्या कि इन्होंने ब्रह्मा जी को देखकर हंस दिए, ये छह पुत्र। इन्होंने क्या देखा कि ब्रह्मा जी अपने पुत्री से ही आकर्षित हो गए हैं और उनकी ओर भाग जा रहे हैं, जिनका नाम वाघ था शायद। तो ये देखकर मरीची के जो छह पुत्र हैं वो हंसने लगे और इस कारण से उनको शाप मिला। और ये शाप क्या था कि उनका जन्म असुर कुल में होगा, और इस तरह से उन्होंने जन्म लिया कालनेमी के छह पुत्रों के रूप में। और जो कालनेमी के जो छह पुत्र थे ये कैसे प्रकट हुए, कालनेमी के छह पुत्र थे ये प्रकट हुए, इस तरह से प्रकट हुए और उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, जिस तरह से हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगे थे लगभग उसी तरह से इन छह पुत्रों ने वरदान मांगे। तो उन्होंने बहुत सारी तपस्या की और उन्होंने वरदान मांगा कि किसी तरह के रोग से, किसी भी देवता से, किसी भी यक्ष से, गंधर्वपति से, सिद्ध चारण से, किसी मनुष्य से, ऋषि मुनियों से वो मारे ना जाए। जो हिरण्यकश्यपु ने जिस तरह से प्रार्थना की, हिरण्यकश्यपु को जब पता चला और ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी और हिरण्यकश्यपु को पता चल गया तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। तो हिरण्यकश्यपु वो बहुत क्रोधित हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए तुम लोग कैसे ब्रह्मा जी के पास गए, अभी तो वर्तमान समय में मैं भगवान हूं, पूरी सृष्टि का संचालन मैं कर रहा हूं। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, हम पढ़ रहे थे भागवत के तृतीय स्कंद की चर्चा चल रही है वहां पर, तो वहां पर बताया जा रहा है कि दिति ने जब गर्भ धारण किया था, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष धारण किया था, 100 साल उन्होंने जन्म ही नहीं दिया दिति ने, किस कारण से, केवल इस कारण से कि ये जब जन्म लेंगे तो क्या होगा, केवल उत्पात मचाएंगे, ये पूरे सृष्टि के सबसे बड़े आतंकवादी होंगे, ये केवल पंजाबी बाग या कुछ क्षेत्रों में ही बम नहीं डालेंगे, ये पूरे सृष्टि में हर कोने में बम डालेंगे और सभी देवी देवता इनसे घबराएं। तो वहां पर ये वर्णन आता है कि दिति ने जब ये गर्भ धारण किया तो गर्भ से ही उनकी शक्ति का पता चला, और उनकी शक्ति क्या थी, सृष्टि में चारों ओर अंधेरा छाने लगा, सूर्य का प्रभाव कम पड़ गया, सूर्य का जो प्रकाश है उसका प्रभाव कम पड़ने लगा, केवल किस कारण से कि दिति ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को धारण किया हुआ है अपने गर्भ में। आप देखिए कितनी शक्ति होगी, सूर्य से ज्यादा शक्तिशाली कौन है बताइए, अगर सूर्य, मान लीजिए सूर्य को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा, ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। लेकिन हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जो बैकुंठ के पार्षद थे, यानी बैकुंठ धाम से जो आते हैं जीव, भगवान के जो नित्य परिकर हैं, उनमें कितनी शक्ति होती है कि एक एक जीव जो है पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं, श्रील भक्तों ठाकुर ने भजन में लिखा है कि एक एक जो गौड़िया वैष्णव है वो पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, इसलिए प्रभुपाद में इतनी शक्ति है। हिरण्यकश्यपु ने आतंक मचाया, श्रील प्रभुपाद ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर दिया पूरे पृथ्वी में, और आज हरिनाम संकीर्तन गूंज रहा है पूरे ब्रह्मांड में, देवी देवतागण भी संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, ऐसा वायु पुराण में दिया है। तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का प्रभाव देखिए कि भगवान की इच्छा से उन्होंने राक्षस का रूप धारण किया, और जब दिति के घर में थे तो उनके प्रभाव से चारों तरफ जो अंधकार फैल गया। तो हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ किनसे, कालनेमी के छह पुत्रों से बहुत क्रोधित हुआ, और हिरण्यकश्यपु ने शाप दिया। क्या शाप दिया, कि तुम्हारे पिता जो है वो कंस के रूप में जन्म लेंगे, यानी कि तुम्हारे मामा के रूप में जन्म लेंगे, और तुम सबको एक एक करके मारेंगे। किस कारण से? क्योंकि तुम सब देवकी के गर्भ से जन्म लोगे, इस कारण से। तो वही जो छह पुत्र हैं, जो मारीची के छह पुत्र थे, कालेमी के जो छह पुत्र बने बाद में, वही फिर जो है देवकी के छह पुत्र के रूप में प्रकट हुए एक एक करके। तो ऐसा वर्णन मिलता है हरिवंश में विष्णु पर्व, और वैष्णव तोषिणी में भी ये बताया है श्री सनातन गोस्वामी ने कि कीर्तिमान जो है वो देवकी के तीसरे पुत्र के रूप में प्रकट हो। तीसरे पुत्र ही नहीं, बाकी जितने छह पुत्र थे वो सब ही जो है देवकी के छह पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार ये सब एक एक करके मारे गए कंस के द्वारा। तो देवकी हमेशा भयभीत रहती थी कंस से। प्रभुपाद बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भयभीत रहते हैं, किससे? इस भवसागर से। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। भयभीत रहने का मतलब क्या है? भयभीत रहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे एक साधारण जीव देहात्म बुद्धि के कारण भयभीत रहता है, उस कारण से भयभीत नहीं। वो भयभीत इसलिए है कि दोबारा वो कई माया में ना फंस जाए, वो माया के चुंगल में ना आ जाए दोबारा। किस कारण से? क्योंकि उनका अनुराग, उनका प्रेम कृष्ण से अधिक होने के कारण ये उनके हृदय में भय बना रहता है। प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं एक बार अर्च्य वगैरह के समक्ष खड़े होकर, उनसे किसी भक्त ने आके पूछा कि प्रभुपाद आप कुछ बोल रहे थे, आप शायद बात कर रहे थे, भगवान से कुछ बात कर रहे थे आप। प्रभुपाद ने कहा मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं कहीं माया में ना गिर जाऊं। तो ये आचार्य लोग शुद्ध भगवान के जो हैं हमें सिखाते हैं कि हमें भी इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कभी माया में ना गिर जाए। कुंती महारानी क्या बोल रहे हैं? विपदा संता ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु अपुनर्भव दर्शन भवत दर्शनम स्याद अपुनर्भव दर्शनम, कि अगर आपका दर्शन होगा तो दोबारा हमें इस भवसागर का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आप बार बार हमें कष्ट दें, क्योंकि कष्ट हम जब कष्ट हमारे ऊपर आएंगे, जब कष्ट आएंगे तो निश्चित रूप से हम आपका स्मरण करें। तो कुंती महारानी का उद्देश्य ये नहीं था कि कष्ट ही आए केवल, उनका उद्देश्य ये था कि वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सके, भगवान का चिंतन कर सके, इस कारण से वो कष्ट मांग रही हैं। ये कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि कुंती महारानी भी कष्ट मांग रही थी। कुंती महारानी कष्ट किस लिए मांग रही थी? कुंती महारानी कष्ट मांग रही थी भवत दर्शनम स्यात्, कि आपका दर्शन हो सके, इसलिए कुंती महारानी कष्ट मांग रही। नहीं तो कष्ट मांगने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, है कि नहीं? तो इस प्रकार देवकी जो है वो भयभीत हैं कंस से, हमेशा भयभीत रहती थी। और ये जो षड गर्भ हैं जो छह पुत्र के रूप में प्रकट हुए, ये छह रिपु हैं, यानी कि छह हमारे अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। ये सारा वर्णन श्रील प्रभुपाद ने दिया है दशम स्कंद में पहले अध्याय के बिल्कुल आखिरी पेज में, पृष्ठ में, अध्याय की समाप्ति पर दिया है। और ये बताया जा रहा है श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर के द्वारा, श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर की टीका। प्रभुपाद जब अनुवाद करते थे, भागवत सामने रखते थे, प्रभुपाद के पास कई टीकाएं होती थी पूर्ववर्ती आचार्यों की, श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर की टीका, श्रील श्रीधर स्वामी की टीका, श्रील जीव गोस्वामी की टीका, श्रील सनातन गोस्वामी की टीका, ये सारी टीकाएं सामने रखते श्रील प्रभुपाद। और इन टीकाओं को देखकर प्रभुपाद तत्काल ही प्रभुपाद क्या करते, अनुवाद करते और तात्पर्य देते। कोई साधारण बात नहीं, आसान नहीं, सुनना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आचार्यों की टीकाओं को देखकर और उसका निचोड़ प्रस्तुत करना ताकि हम लोग समझ सकें प्रभुपाद ने इस तरह से प्रस्तुत किया, ये प्रभुपाद का विशेष योगदान है। और आज की परिस्थिति को देखते हुए भी वर्तमान समय में कैसे लोग इसको अपनाएंगे, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान रखते हुए प्रभुपाद ने पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका हमें दी है। इसे प्रभुपाद जी का जो अनुवाद किया गया जो श्रीमद् भागवतम है, एक अनमोल धन है पूरे वैष्णव समाज के लिए। इससे पहले इस प्रकार की टीका, इस प्रकार की व्याख्या प्रभुपाद से पहले किसी ने नहीं की। जैसे पूर्ववर्ती आचार्य ने क्या किया, और उन्होंने श्लोकों की व्याख्या की, श्लोकों का मंथन किया, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो उनका रस आस्वादन करते थे। लेकिन साधारण व्यक्ति जो पहली बार पढ़ेगा भागवत को, वो कैसे समझेगा इन बातों को? तो प्रभुपाद ने इस तरह से इसको प्रस्तुत किया है कि पहली बार भी कोई श्रीमद् भागवत पढ़े तो उसको भी समझ में आने लगे। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है बहुत जरूरी है पढ़ना, खासकर जो प्रभुपाद के द्वारा जो अनुवाद किया गया। जिसने प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ भागवतम नहीं पढ़ा वो भागवतम को सीधे नहीं समझ सकता, असंभव है, बहुत ही कठिन है। तो इस प्रकार ये जो छह अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये छह पुत्र इसका संकेत देते हैं। और वेदों में क्या बताया गया, भक्तिर एवैनम दर्शयति, यानी भक्ति के द्वारा ही हम लोग भगवान के निकट आ सकते हैं। और देवकी माता देवकी जो है उनका उनकी तुलना भक्ति से की गई है। तो भक्ति माता देव की भक्ति भक्ति से तुलना की गई है। और जब सबसे पहले जब बलराम जी प्रकट हुए या बाद में फिर कृष्ण प्रकट हुए, तो चारों तरफ क्या हुआ, कंस के कारागार में प्रकाश फैल गया, उससे पहले अंधेरा था। जब ये छह पुत्र प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे, उस समय अंधेरा था, लेकिन जब बलराम जी प्रकट हुए तो देवकी का जो शरीर है पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया। और कृष्ण जब प्रकट हुए तो पूरा कारागार प्रकाशित हो गया। और मरीचि की तुलना जो है मन से की गई है। मरीचि के बारे में हमने सबसे पहले बताया था, इनकी तुलना किससे की गई है, मन से की गई। तो हमारे मन में ये छह प्रकार के शत्रु हैं, ये छह प्रकार के अनर्थ हैं। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन अनर्थ अपने आप तो दूर होंगे नहीं, तो अनर्थ दूर कौन करेगा? अनर्थ दूर करेंगे बलराम जी से। हमने ये सुना था, एक भक्त बता रहे थे हमें पिछले कुछ दिनों में, कि बलराम जी जो मूसल धारण किए हुए हैं, इसको हल कहते हैं, अच्छा हल, जो हल धारण किया है बलराम जी ने, वो हल धारण क्यों किया है? जिस तरह से हल के द्वारा जमीन को जोता जाता है और जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है, उसी तरह से बलराम जी क्या करते हैं, हमारे हृदय को उपजाऊ बनाते हैं अपना हल चलाकर। हमारे मन में बलराम जी हल चलाते हैं, और जब हल चलाते हैं तो क्या होता है, अनर्थ करते हैं। और जितने अधिक अनर्थ करते जाते हैं उतने ज्यादा हम लोग निष्ठा के सर पर पहुंचते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, आदौ श्रद्धा तथा भजन क्रिया अथा निवृत्ति स्या तथा निष्ठा। ये यहां पर क्रम बताया है, भागवत में भी यही बताया क्रम। तो इस प्रकार जो बलराम जी की कृपा होती है, बलराम जी क्या करते हैं, यानी गुरुदेव क्या करते हैं, शिष्य को भजन क्रिया देते हैं। और भजन क्रिया का अभ्यास जब करता है शिष्य, साधक जब करता है, तो क्या होता है, अनर्थों से निवृत्त होता है। तो साक्षात भक्ति देवी जो हृदय में प्रकट होते हैं, भजन क्रिया का अभ्यास किया जाता है, और इस तरह से साधक जो है वो निष्ठा के स्तर पर पहुंचता है, शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचता है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक भक्ति देवी की कृपा नहीं होगी ये अनर्थ दूर नहीं होंगे। जो छह प्रकार के वेग बताए हैं श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये छह वेग बताए हैं। ये छह वेग तभी शांत हो सकते हैं जब हृदय में भक्ति हो। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हितकम्। तब ज्ञान और वैराग प्रकट होगा, कब, जब हृदय में भक्ति होगी। भक्ति परेशान भाव विरक्ति, तो इसलिए माता देव की जो की तुलना जो भक्ति से की जा रही है, उनके घर में क्या है, बलराम जी प्रकट होंगे। लेकिन उससे पहले ये दिखाया जा रहा है कि छह प्रकार के अनर्थ हैं जिनके कारण अंधकार फैला रहता है, हम ठीक ठीक भक्ति नहीं कर पाते हैं, जिसको अनिश्चिता भजन क्रिया कहते हैं। अनिश्चिता भजन क्रिया, भजन क्रिया जब हम लोग स्थिरता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, कभी हरिनाम में मन लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी साधु संग करने की इच्छा होती है, कभी नहीं लगता है, मन नहीं करता है साधु संग करने का, कभी सेवा में इच्छा होती है, बहुत प्रबल इच्छा होती है, कभी नहीं इच्छा होती है। इसका मतलब क्या है, हम कौन सी स्थिति में है, अनिश्चिता भजन क्रिया की स्थिति में, यानी कि अभी अनर्थों से छुटकारा नहीं मिला हमें। तो ये अनर्थ हमें बड़े तंग करते हैं, इसलिए इन अनर्थों से बचने का सबसे सरल तरीका है गुरु के चरणों के निकट रहना। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। और से पहले क्या बता रहे हैं, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया किया आरोना कोरिया मने आशा, नरोत्तनदास ठाकुर ये कह रहे हैं। और कोई आशा मत करो, बस गुरु के चरणों के बिल्कुल निकट रहो। इसको कहते हैं आचार्य उपासनम। भगवान गीता में बता रहे हैं 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, असली ज्ञान क्या है उसे कई बातें बताएं। उसमें एक बात भगवान कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि आचार्य के निकट रहना यह असली ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ अज्ञानता है। तो जितना अधिक कोई गुरु या आचार्य के निकट रहता है वो उतना ज्यादा सुरक्षित है, कनिष्ठ अवस्था में भी वो शुद्ध भक्ति कर सकता है। कोई पूछेगा कनिष्ठ अवस्था में कैसे कोई शुद्ध भक्ति कर सकता है, कनिष्ठ अवस्था में शुद्ध भक्ति किया जाता है जब कोई गुरु की आज्ञा का यथारूप पालन करता है, तो ऐसी सेवा ऐसी भक्ति शुद्ध भक्ति कहलाती है, भले ही वो कनिष्ठ भक्त हो। और ऐसी शुद्ध भक्ति करते करते वो फिर क्रमशः वास्तव में शुद्ध भक्त बन जाता है, यह है प्रक्रिया। तो इस प्रकार इसको हम समझने का प्रयास करें। और इस प्रकार बलराम जी प्रकट हुए, जब ये 6 प्रकार के जो रिपु हैं इनका संहार किया गया, असुरों का संहार किया गया, असुरों का नहीं उन 6 बालों का संहार किया गया जो माता देवी के गर्भ से प्रकट हुए, एक एक करके प्रकट हुए और सबको मारा गया। और जब बलराम जी प्रकट हुए तो योग माया ने उनको स्थानांतरित कर दिया माता रोहिणी के गर्भ से। और माता रोहिणी कहां पर है, कहां पर थी माता रोहिणी, गोकुल में, गोकुल में माता रोहिणी है। और योग माया उनको पहुंचा दिया उन्होंने, योग माया ने उनको स्थानांतरित कर दिया। अब क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो भगवान का आदेश मिला था, किसको मिला था आदेश, वसुदेव जी को आदेश मिला था, वसुदेव जी को आदेश मिला था कि मेरे प्रकट होने पर, मेरे जन्म लेने पर आप क्या करेंगे, मुझे आप गोकुल लेकर जाएंगे, और गोकुल ले जाकर वहां पर क्या करेंगे, वहां से योग माया को लेकर आएंगे, और योग माया को लाकर आप यहां पर रखेंगे। तो इस तरह से फिर जब उन्होंने किया, वो जब गोकुल गए और वहां से फिर योग माया को यहां पर लेकर आए, कंस को पता चला कि फिर से अब जन्म देने वाले हैं, माता देव की जन्म लेने वाले हैं, तो उनको लगा कि ये तो कोई बालक ही होगा, आकाशवाणी में तो यही पता चला था कि बालक हो जन्म लेगा, लेकिन ये तो लड़की है योग माया। तो कल से सोचा कि फिर ठीक है, इसको छोड़ देना चाहिए हमें, इसको मारने का क्या फायदा। लेकिन उसके मंत्री थे असत संग, जिसको कहते हैं जो वैश्य अपराध होता है वो भी असत संग के कारण होता है, और किसी की बुद्धि अगर दुष्ट बुद्धि बनती है वो भी असत संग के कारण होता है। असत्संगी बहुत सारे थे कंस के, चाणोर, मुष्टिक, बानासुर है ना, अगासुर, ये सारे वहां पर आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते थे और अपना सुझाव देते रहते थे। कंस ने पूरे पृथ्वी में अपना साम्राज्य बसाया हुआ था और कई असुर और राक्षस जो है उनके समर्पित हो गए थे। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कंस ने इस प्रकार घोषणा कर दी थी। तो राक्षसों ने असुरों ने पूर्ण शरण ली हुई थी कंस की, तो वो अपनी बुद्धि देते थे। चाणूर और मुष्टिक विशेष रूप से उनके मंत्री थे, उन्होंने बताया कि ये कोई जरूरी थोड़ा है कि वो बालक के रूप में ही जन्म ले विष्णु, वो एक लड़की के बालिका के रूप में भी जन्म ले सकता है, उसका कुछ पता नहीं है, वो माया भी है, उसको भी मत छोड़ो आप। तो फिर कंस गए कारागार में और फिर उठा के जैसे ही वो मारने लगा तो वो प्रकट हो गई योग माया सामने। तो इस तरह से योग माया ने बताया कि तुम्हें मारने वाला तो प्रकट हो चुका है, मुझे क्या तुम मारोगे, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है वो जब प्रकट होते हैं तो फिर कितनी भी हम व्यवस्था कर लें, कुछ भी हम बुद्धि लगा लें, हम कुछ नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यप ने कितनी बुद्धि लगाई अपनी, ऐसी बुद्धि लगाई कि लगता है उस बुद्धि का कोई तोड़ ही नहीं था, लगभग क्या है अमर होने का वरदान मांग लिया था। ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर दिया है कि नहीं, ब्रह्मा जी को भी एक तरह से बेवकूफ बना दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। और हिरण्यकश्यपु ने क्या सोचा, अब मैं अमर हो गया हूं, अब कोई मुझे मार नहीं सकता है, और उसका आतंक फैलता रहा। लेकिन उसको क्या पता था कि भगवान के पास जो बुद्धि है उसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता है, कि आवश्यक नहीं है कि भगवान माता के गर्भ से ही प्रकट हो, वो तो खंभे से भी प्रकट हो सकते हैं। कोई सोच सकता है कि भगवान खंभे से भी प्रकट हो सकते हैं? तो देखिए, लेकिन भगवान फिर भी जब नर लीला करते हैं तो माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, और इस प्रकार बलराम जी प्रकट हुए। तो गर्गाचार्य से जब बातचीत चल रही थी नंद महाराज की और माता यशोदा की, तो गर्गाचार्य ने बताया, क्योंकि उनका वह नामकरण संस्कार करना चाहते थे बलराम जी का, कृष्ण बलराम का, तो गर्गाचार्य कहते हैं कि नंद महाराज, मैं तो यादव वंश का पुरोहित हूँ, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर कंस समझ जाएगा कि ये देवकी के पुत्र हैं। मतलब एक तरह से आचार्य ने टीका दी है कि गर्ग आचार्य ये बता रहे थे कि वास्तव में ये जो है वो देवकी के पुत्र हैं। इस तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में बताया बात, और साथ में ये भी बताया गर्गाचार्य ने कि कंस जो है बहुत दुष्ट आदमी है, राक्षस है, असुर है, और योग माया से सुनने पर अब वो क्या करना चाहेगा, जिस पुत्र के द्वारा उसको मारा जाएगा वो उसको मारने की इच्छा प्रकट करेगा। जैसे ही उसको पता चलेगा कि आपका नामकरण हुआ है और आपने यहाँ पे जन्म दिया है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आकर इनको मारना चाहेगा, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो फिर इस प्रकार गर्ग मुनि से प्रार्थना की नंद महाराज ने, तो आप ऐसा करें, हम बहुत बड़ा उत्सव नहीं करेंगे, आप इनको गौशाला में नाम लीजिएगा, वहाँ पे आप इनका नामकरण करें। गौशाला में उस समय जब सारे ग्वाले जो है गोचारण के लिए चले जाते हैं गैया को लेकर, तो उस समय गौशाला में कोई होता नहीं। प्रातःकाल में जब सारे ग्वाले निकल जाएंगे, नंद महाराज का घर खाली हो जाएगा, है ना, पीछे कोई नहीं रहेगा, तो गौशाला में क्या होगा, वहाँ पर एकांत में हम ये नामकरण संस्कार कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान भी दिखा रहे हैं अपने लीला के द्वारा कि संस्कार कितने ज़रूरी हैं, है ना। भगवान भी जो है वो संस्कार करवा रहे हैं, नामकरण संस्कार जिसको कहते हैं। बाद में हम जानते हैं कि उपनयन संस्कार भी हुआ, सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा गया उनको। तो नंद महाराज कहते हैं कि आप कृपा करके ऐसा करें और गौशाला में इनका नामकरण करें। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम को ले जाया गया, एकांत में ले जाया गया और उनका नामकरण किया गया। और क्या बताया गर्गाचार्य ने, क्या बताया कि ये जो पुत्र है, क्योंकि सबको आध्यात्मिक बल देगा और भगवान की दिव्य सेवा में लगाएगा, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, क्या पड़ेगा, बलराम। और इस तरह से कृष्ण का नाम भी दिया। तो यहाँ पर ये भी बताया कि अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को अपने दिव्य गुणों के द्वारा ये बलराम क्या करेगा, आनंद प्रदान करेगा, इस कारण से इसका नाम राम होगा। और क्योंकि आध्यात्मिक बल देगा तो ये इसका नाम बल होगा। तो दोनों को जब मिला दिया जाए तो ये बलराम कहलाया जाएगा, क्योंकि ये दो परिवारों को जोड़ेगा, वसुदेव के परिवार को और नंद महाराज के परिवार को ये मिलाएगा। इस कारण से ये संकर्षण के नाम से भी जाना जाएगा, तो इस कारण से भी इनको संकर्षण कहा जाता है। संकर्षण जो गुरुत्व आकर्षण जिसको कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं, उसके भी मूल कारण जो है वो संकर्षण ही है। संकर्षण का मतलब आकर्षण। संकर्षण, आप कुछ भी फेंकिए, ऊपर फेंकिए तो वापस नीचे आके गिर जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से बलराम जी आकर्षित करते हैं, लेकिन सबसे अधिक आकर्षित करने वाले कौन हैं? वो स्वयं कृष्ण हैं। वो बलराम जी को भी आकर्षित करते हैं, वो हैं कृष्ण। तो ये जो गुरुत्व आकर्षण के भी मूल कारण है बलराम जी हैं, और उनका प्रभाव जो है सृष्टि में भी रहता है। तो इस प्रकार ये वर्णन किया गया है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन प्राप्त होता है। तो नंद महाराज की जो पत्नी थी वो वैश्य परिवार से थी, और वसुदेव की जो पत्नी थी वो क्षत्रिय परिवार से थी। तो हालांकि नंद महाराज और वसुदेव जी दोनों एक ही पिता से आए थे, भाई थे, दोनों भाई थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने अलग अलग परिवारों से विवाह किया, इसलिए विभाजन हो गया क्षत्रिय परिवार से और वैश्य परिवार से। यानी कि नंद महाराज के परिवार में जो जन्म लेंगे वो वैश्य परिवार के माने जाएंगे, और वसुदेव के परिवार में जो जन्म लेंगे वो क्षत्रिय माने जाएंगे। और अब बलदेव जी ने क्या किया है, उन दोनों को मिला दिया है, इस कारण से वो संकर्षण माने जाएंगे। नंद महाराज के और वसुदेव जी के पिता वही हैं, लेकिन नंद महाराज ने क्या किया, वैश्य परिवार के सुपुत्री से विवाह किया, और वसुदेव जी ने क्षत्रिय परिवार की पुत्री से विवाह किया। तो इस कारण से विभाजन हो गया था, लेकिन अभी बलराम जी के आने की वजह से, संकर्षण के आने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने दोनों परिवारों को मिला दिया, इस कारण से भी वो संकर्षण के नाम से जाने जाते। तो इस प्रकार ये कुछ आज हमने बताने का प्रयास किया बलराम जी के बारे में। तो बलराम जी नीलाम्बर वस्त्रधारी हैं, आदि गुरु तत्व हैं। हम सबको बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति अधिक से अधिक बढ़े और बढ़े। जो भी कमी है बलराम जी की कृपा से वो पूरी होगी। यहाँ पे कई भक्त हैं जो भक्ति में आगे बढ़े हैं, कई भक्त हैं जो बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी भक्त लोग जो हैं ये प्रार्थना कर सकते हैं, बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होगी तब तक राधारानी की कृपा नहीं होगी। तो इसलिए बलराम जी की कृपा की प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। और कलयुग में जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया कि बलराम जी कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही कृपालु हैं। जिसने नित्यानंद प्रभु की शरण ले ली वो जल्द ही उसको महाप्रभु की कृपा मिली, है ना। हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाए ते नाई, तारा हुए ब्रज भूमे वास, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर यही कह रहे हैं कि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक राधा कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती है। तो इसलिए जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु परंपरा की कृपा नहीं मिलेगी हमें, और गुरु परंपरा की कृपा नहीं होगी तो छह गोस्वामियों की कृपा कैसे मिलेगी, और छह गोस्वामियों की कृपा नहीं मिलेगी तो पंचतत्व की कृपा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये कृपा लेने का ये तरीका है, क्योंकि कृपा लेने का ये तरीका यही है कि कई बार हम लोग अर्चक वगैरह से सीधा कृपा मांगना चाहते हैं, लेकिन कृपा हमें गुरु परंपरा के माध्यम से लेनी चाहिए। जब गुरु कृपा हो जाती है तो अपने आप फिर सारी कृपा आ जाती है। तो इस प्रकार इन बातों को समझने का हम प्रयास करें। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई समीक्षा है, कोई कमी है तो आप पूरा करें, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो उनके दोनों ही परिवार के, दोनों ही नंद महाराज वसुदेव के एक ही पिता हुए, लेकिन अब क्या है कि नंद महाराज और वसुदेव इनकी अलग अलग पत्नियां हुई। नंद महाराज की पत्नी वैश्य परिवार से थी और वसुदेव जी की पत्नी क्षत्रिय परिवार से थी, तो इस कारण से एक क्षत्रिय परिवार के हो गए, एक वैश्य परिवार के हो गए। अब बलराम जी के आने से क्या हुआ, क्योंकि वो स्थानांतरित हुए माता देवकी के गर्भ से, रोहिणी के घर में चले गए, माता रोहिणी के घर में चले गए, इस कारण से उन्होंने दोनों परिवार को जोड़ दिया। इस कारण से बलराम जी को संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है। योग माया और महामाया का अंतर क्या है? वास्तव में ये जो भेद किया जा रहा है योग माया और महामाया का, ये हमारे लिए किया जाता है। भगवान के लिए कोई भेद नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भी कोई भेद नहीं। बड़ा सरल सा उदाहरण है, जैसे कि बिजली के घर, बिजली घर से बिजली आती है कि नहीं, पावर हाउस से बिजली आती है, तो वो तो आपको बिजली भेजते हैं, वो ये थोड़ा गर्म करके तो नहीं भेजता कोई आप, ना कोई ठंडा करके भेजता है। अब आप बिजली वाले को बुला के आप क्या कर सकते हैं, कमरे को ठंडा करवा सकते हैं या गर्म करवा सकते हैं, आप एसी चला के टेम्पल हॉल को ठंडा कर सकते हैं या फिर आप हीटर चला के या गर्म कर सकते हैं। इसी तरह से भगवान के लिए तो सभी दिव्य है, जैसे कि इसी श्लोक में देखिए, देवी यश गुणमयी मम माया ध्रुतया, तो प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेशन किया, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, प्रभुपाद ने इसी तरह से अनुवाद किया ना, कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो प्रभुपाद ने तो ये लिखा डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, तो भगवान के लिए तो सब कुछ दिव्य ही है, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भी सब कुछ दिव्य है। क्यों दिव्य है शुद्ध भक्तों के लिए, क्योंकि सब सब वस्तुओं को वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं, सब वस्तुओं को भगवान से संबंधित देखते हैं, ईशावासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, तो शुद्ध भक्तों के लिए कोई बहुत वस्तु भौतिक होती ही नहीं है, सब कुछ दिव्य होता है उनके लिए। इसलिए अगर वो पृथ्वी में आ भी जाते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमने धाम छोड़ दिया है, उनके लिए पृथ्वी भी धाम है, वो जहां भी जाते हैं वो धाम का ही दर्शन करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी है कि नहीं, प्रभुपाद ने पूरे पृथ्वी में उन्होंने मंदिरों की स्थापना की और कई जगह उन्होंने स्थान दिए जो धाम के नाम है, जैसे न्यू वृंदावन, न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू द्वारकापुरी। तो प्रभुपाद ने ये नाम ऐसे ही नहीं दिया है, ये प्रभुपाद की दिव्य दृष्टि है। जब वैश्वर्यना की पहाड़ियों में गए और वहां नदियों को देखा, पहाड़ियों को देखा, तो प्रभुपाद जी को गोवर्धन का स्मरण हुआ, यमुना जी का स्मरण हुआ, प्रभुपाद ने कहा यह तो न्यू वृंदावन है। तो जो कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसके ऊपर फिर महामाया का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है, वो हर जगह देवी माया का ही प्रभाव देखता है। हाँ, इनका प्रश्न है कि साधारणतया तो पिता से चलता है, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य में ऐसा बताया गया है कि नंद महाराज और वसुदेव, इसमें वास्तव थोड़ा सा वहाँ से गलती जरूर हो गई, इसमें यह था कि नंद महाराज का जो जन्म है वो उनकी माता वैश्य परिवार से थे और वसुदेव जो मतलब वसुदेव जिनके पिता थे शूरसेन, है ना, हाँ शूरसेन थे ना उनके पिता, तो उनकी पत्नी जो है क्षत्रिय परिवार से, तो इस प्रकार उनको क्षत्रिय कहा गया। और बलराम जी ने क्या किया, उन्होंने क्योंकि स्थानांतरित हुए वो, उन्होंने दोनों परिवारों को जोड़ दिया, वसुदेव की जो माता थी वो क्षत्रिय परिवार से थी और नंद महाराज की जो माता थी वो वैश्य परिवार से थी, ये अंतर। हाँ प्रसंग में तो ऐसे समझाया गया कि माता से ही चला है, और कुछ बस। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की, श्री श्री राधिका रमण की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।